ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। आज हम इसी विषय पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत अदिति जी।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और यह किस रूप में दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लक्ष्य रखा गया है।
देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो है उसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और उसका लक्ष्य यही था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उस वक्त का था उसमें जो वल्नरेबल और गरीब परिवार थे उन तक स्वास्थ्य का लाभ सस्ती दरों पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि अर्बन सेंटर्स में तो फिर भी आपके पास हॉस्पिटल्स का एक्सेस होता है लेकिन जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं दूर दराज इलाकों में उनके पास नहीं होता है, तो किस तरीके से उन तक पहुंचा जाए। तो उसका एक ढांचा तैयार किया गया। उस ढांचे के तहत ये डिसाइड किया गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विलेज के पास जहां लोग रहते हैं उसी नेबरहुड में पास में बनाए जाएं और आयुष्मान भारत कार्ड इशू किए जाएं गरीब परिवारों को, जो जैसा कि मैंने कहा कास्ट सेंसस में चिन्हित परिवार हैं। करीब 10 करोड़ परिवारों से ये योजना शुरू हुई थी और शुरू होते होते उसके बाद एक्सपैंड होती चली गई। बाद में इसमें आशा वर्कर्स को भी जोड़ा गया 2022 के करीब। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका सबसे बड़ा फीचर, अभी हाल ही में 11 सितंबर 2024 को जो यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि 70 साल से ज्यादा जितने भी लोग हैं, जितने भी वृद्ध हैं, उन सबको इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। तो इसमें बेसिक जो है प्रोविजन यही है कि 5 लाख का जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर है वो एनुअली परिवार जो होता है, जैसा कि अगर हम 70 साल से ज्यादा लोगों की बात करें तो कम से कम 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा और ये 4.5 करोड़ परिवारों का हिस्सा अभी है। तो एक परिवार में जो भी वृद्ध होगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा और बिल्कुल फ्री योजना है। 5 लाख तक के कवर के लिए कुछ नहीं देना और इसको आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। पास के जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं इस योजना के तहत उसमें जाके कार्ड दिखा के अपना हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं, तो लाइनों में नहीं लगना है। तो बहुत ईज ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं वो ये योजना प्रदान करती है बहुत गरीब परिवारों को।
आयुष्मान भारत को बढ़ावा देने के लिए आइए हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये अपनी जेब से देने होते।
यहाँ पर एक दूसरा सवाल समझना चाहेंगे, जो चिन्हित लोग हैं जिनका के डेटा तैयार है उनके अतिरिक्त बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैसे वो अपना नाम दाखिल करवा सकते हैं, कैसे वो इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसी भी कोई योजना है?
जब ये योजना पारित हुई थी और जब ये सवाल कैबिनेट ब्रीफिंग में सब पूछे गए थे उस वक्त मंत्रियों की तरफ से ये जवाब आया था, जैसे हमने यही पूछा था जो आपने सवाल आज मुझसे किया है कि कितने ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं 70 साल से ज्यादा इस देश में जिनको इनका लाभ मिल सकता है। तो ये पूरा काउंट हुआ हुआ है और ये 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि इसके ओवर एंड अबव हैं वो नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट सिस्टम में अवेलेबल है। हम सबको पता है कि किन परिवारों में 70 साल से ज्यादा लोग रहते हैं, ये 6 करोड़ लोग हैं और ये 4.5 करोड़ परिवारों में अवेलेबल हैं ये जितने भी लोग हैं। एक जो सवाल आपने कुछ देर पहले मुझसे पूछा था कि सपोज 2 लोग हैं एक परिवार में जो 70 साल से ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में किस तरीके से होगा? तो सपोज आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और दोनों ही 70 साल से ज्यादा हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये परिवार बेस्ड एक स्कीम है, मतलब एक परिवार के लोगों को इसका लाभ होगा। तो सपोज एक परिवार में एक हस्बैंड है और वाइफ है जो दोनों 70 साल से ज्यादा है, उनको 5 लाख रुपए की कवरेज मिलेगी एनुअल, लेकिन उन दोनों को आपस में इसको शेयर करना होगा
जी।
आप समझ गए, एक परिवार को यूनिट लेके, सपोज एक परिवार में 3 लोग वृद्ध हैं जो 70 साल से ज्यादा हैं, तो उस परिवार के अंदर जो सपोज 2 हैं, अगर 2 हैं तो 2 आपस में बांटेंगे, 3 हैं तो 3 आपस में बांटेंगे 5 लाख की रकम, अगर उस परिवार का हिस्सा है, जो 4.5 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया है।
श्रोताओं, स्पष्ट हो गया कि 5 लाख की राशि है वह एक वर्ष के लिए एक परिवार के लिए निर्धारित की गई है, लोगों की संख्या कम या अधिक हो सकती है और उसमें जिन वृद्ध को आवश्यकता हो इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रामीण भारत की ओर ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ग्रामीण भारत में इस योजना ने किस तरह जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुँचाया है।
जी देखिए, ग्रामीण भारत में अभी तक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। हम जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत वीक रहती है। ये तो एक मुद्दा है कि आप 5 लाख का एनुअल कवर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हर तरह के गरीब परिवारों को दे रहे हैं। देखिए, एक चीज और जो स्पष्ट मैं कर दूं इससे पहले कि हम ग्रामीण अंचल की तरफ जाएं, जो ओरिजिनल स्कीम थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें 10 करोड़ परिवार जुड़े थे
जी,
तो उन 10 करोड़ परिवारों को तो योजना का लाभ मिल ही रहा है पहले से। अगर उन 10 करोड़ परिवारों में कोई 70 साल से ज्यादा उम्र का वृद्ध रहता है तो उनको 5 लाख का कवर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि 70 साल से ज्यादा वृद्धों को अभी जोड़ा गया है। पहले से कवर्ड परिवारों को, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के 10 करोड़ परिवार हैं, क्योंकि अभी जो कवर हुए हैं वो परिवार 4.5 करोड़ हैं, वो ओवर एंड अबव हैं
जी।
जो पहले से कोई परिवार इस योजना का लाभ ले रहा है और उस परिवार में 70 साल से ज्यादा कोई वृद्ध रहता है
जी,
तो उनको एक टॉप अप मिलेगा। 5 लाख का कवर उस परिवार को पहले से मिल रहा है वो मिलता रहेगा
जी,
और अगर 70 साल से ज्यादा कोई वृद्ध उनका है तो उनको 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर मिलेगा एनुअल। जो आपने इम्पोर्टेंट एक बात कही कि ग्रामीण भारत में इसका क्या असर हो रहा है, देखिए जैसा कि हमने कहा अभी कि ये एक बहुत होलिस्टिक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की स्कीम है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक हिस्सा है एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का, उसी पैकेज का हिस्सा जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर, जिसका अभी पीछे नाम आरोग्य मंदिर के नाम से जो जाने जा रहे हैं। और हम जान लें कि अभी विलेज स्तर पर, जिसको हम कहते हैं कि सब सेंटर के लेवल पर, कम से कम अगर मेरी जानकारी सही है तो 170,000 ऐसे आरोग्य मंदिर बन के तैयार हो गए हैं। तो ये जो आरोग्य मंदिर हैं, ये जो आप ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं उसमें विलेजेस के आसपास खुले हैं और वहां पर लोग जाकर अपनी बेसिक स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। इन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में कैंसर्स की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। आमतौर पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर के छोटे छोटी चीजें होती हैं, वहां आपको डॉक्टर्स, कोई खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है आप जाके दिखा सकते हैं, कोई क्रॉनिक इश्यू है आप जाके दिखा सकते हैं, टीबी का प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्यादा कोई बीमारी है तो आगे रेफर कर दिया जाएगा। तो मतलब सरकार अभी जो आयुष्मान भारत के पैकेज के माध्यम से, जो नेशनल हेल्थ मिशन का हिस्सा है, उसके माध्यम से ग्रामीणों के लिए ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं, आरोग्य मंदिर हैं, ये घर घर तक प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और रेफरल का काम कर रहे हैं।
यहाँ पर हम थोड़ा सा और कार्यक्रम को विस्तार देना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत के माध्यम से या अन्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से, अभी तक हमने चर्चा की कि अस्पतालों में दाखिला हो जाएगा, लेकिन अस्पताल में दाखिला के साथ जो अन्य खर्चे होते हैं, जैसे कह लें दवाओं की खरीद पर या पोषक आहार के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं या इस योजना के तहत लाभ मिलता है क्या?
देखिए, जो आपने दवाइयों का जिक्र किया है वो तो जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जो फ्री मेडिसिन अभी और हाईली सब्सिडाइज, जिसको कहते हैं बहुत ही कम मात्रा में, वो सब्सिडाइज मेडिसिन अवेलेबल करवाई जा रही हैं। और जन औषधि केंद्रों का तो ये है कि हर तरह के, मतलब अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में भी जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो दिल्ली में है उसमें भी जन औषधि केंद्र की एक ब्रांच खोली गई है। तो आमतौर पे आम लोग भी जाके वहां से सस्ती दवाइयों का लाभ ले सकते हैं, बल्कि कैंसर की बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपको 70% 80% कम कॉस्ट पे इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मिलती हैं।
एक और सवाल समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि देश में जो सामान्य स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो मातृत्व की दिशा में आगे बढ़ रही हैं उनके लिए, साथ ही छोटे बच्चों के लिए कोई विशेष योजना चल रही हो जिसका लाभ उठा सकते हो आम लोग?
ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसकी तरफ से एक योजना जो चलती है उसका ये नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो चलती है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
जी।
और जो कार्यान्वयन करने वाली मिनिस्ट्री है वो, जैसा कि मैंने कहा, मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनका कि आपने जिक्र किया और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनको 6,000 रुपए का ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को कैश सपोर्ट दिया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जो काफी देर से चल रही है और इसकी भी एक्सपेंशन काफी हद तक बार बार सरकार ने की है।
यहाँ पर कोई सलाह आप देना चाहें जहाँ आम लोग इस योजना का लाभ उठा सकें, साथ ही सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो या इसका अगला चरण हो जिससे कि हर किसी को लाभ पहुंच सके, कोई आपकी विशिष्ट सलाह जो आप देना चाहें?
देखिए, सलाह तो यही है कि आज भी मुझे लगता है कि सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि उन योजनाओं की जानकारी का अभाव अभी भी ग्रामीण अंचल में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आशा वर्कर्स के माध्यम से बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, वो कर भी रही हैं। देखिए, आशा वर्कर्स को बहुत इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका जिसको कहते हैं रूरल हेल्थ काडर है, जो गांव-गांव जाकर आपकी तमाम स्वास्थ्य की योजनाएं, महिला और बाल विकास की योजनाओं को एक अमली जामा पहनाने का काम करती हैं। आशा वर्कर्स हो गई, ANMs हो गई, ऑक्सिलरी एंड नर्सिंग मिडवाइफ्स, तो इनको जितना इनका मेहनताना बढ़ाया जाए उतना बेहतर है। सरकार कोशिश करती है फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट को बढ़ाना, इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आशा काडर को एक्सपैंड करने की जरूरत है, ANM काडर को एक्सपैंड करने की जरूरत है, प्लस अवेयरनेस के लिए कोई इनोवेटिव स्टेप्स बनाने की जरूरत है कि डिमांड कम्युनिटी से आनी चाहिए। सप्लाई तभी कामयाब होगी जब कम्युनिटी उसको डिमांड करेगी। जैसा कि हमने निर्मल ग्राम योजना में देखा, हम सालों से सुनते आ रहे थे कि टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं विलेजेस में, लेकिन मैंने खुद कितने विलेजेस में ट्रैवल किया था प्रीवियस सरकारों में, तो तब क्या होता था कि आप देखते थे कि टॉयलेट में स्टोर रूम बना लिया है लोगों ने।
जी, जी, जी,
आप टॉयलेट तो दे देंगे, लेकिन आप उनका माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे
जी,
कि
जी,
वो
जी,
इस चीज को समझें कि हाइजीन जरूरी है उनकी हेल्थ के लिए। तो ये माइंडसेट चेंज के लिए इनोवेटिव अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है आज भी।
ये आपने बहुत बढ़िया सलाह दी है। श्रोताओं, यदि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये हमारा, आपका, हर किसी का दायित्व है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस लक्ष्य से शुरू की गई हैं, उन लक्ष्यों का सही अर्थों में अनुपालन हम और आप मिलकर ही सुनिश्चित करें। यदि हम ऐसा कर सकें तो एक व्यापक मानसिकता में बदलाव होगा और योजनाओं का लाभ हमारे आपके घर आंगन तक अच्छी तरह पहुंचेगा। यहीं पर श्रोताओं की ओर से अदिति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।